एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं बॉब डिलन की किताब क्रॉनिकल्स वॉल्यूम 1 पर। अब इसे सीधी साधी आत्मकथा कहना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? ये कुछ अलग ही चीज है।
बिल्कुल, ये पारंपरिक तरीके से लिखी गई, मतलब एक सीधी जीवन कहानी नहीं है। डिलन यहाँ कोई तारीखवार हिसाब नहीं देते,
हाँ,
बल्कि ये किताब उनके जीवन और सफर के कुछ खास अहम मोड़ों, कुछ चुनिंदा यादों का एक, कह सकते हैं, झरोखा है।
अच्छा,
ऐसा लगता है जैसे आप उनके साथ बैठकर उनकी यादों की गलियों में घूम रहे हो।
हाँ,
कभी यहाँ कभी वहाँ, थोड़ी बिखरी हुई सी।
हाँ,
और बॉब डिलन, मतलब रॉबर्ट जिमरमैन जैसा उनका असली नाम था, 1941 में जन्मे, गायक, गीतकार, कवि,
एक पूरी पीढ़ी की आवाज।
हाँ, और नोबेल पुरस्कार विजेता भी।
इतनी सारी पहचाने, लेकिन आज भी उनकी कहानी, खासकर उनके अपने शब्दों में, क्यों मायने रखती है?
देखिए, डिलन हमेशा से एक क्या कहते हैं, पहेली रहे। लोगों ने उनपे इतने लेबल लगाए, इतनी बातें कहीं कि वो असली इंसान कहीं शायद पीछे छूट गया। ये किताब दशकों की बाहरी व्याख्याओं के बाद खुद डिलन की तरफ से एक कोशिश है ये बताने की कि उनके लिए क्या मायने रखता था, उन्होंने दुनिया को कैसे देखा।
अच्छा,
ये उस सवाल से जूझती है जो हमेशा उनके इर्द गिर्द रहा, बॉब डिलन आखिर हैं कौन? और ये किताब दिखाती है कि जवाब शायद उतना सीधा है ही नहीं।
तो चलिए इस किताब के आईने से डिलन के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। मिनेसोटा के छोटे से शहर हिबिंग में उनका जन्म हुआ, रॉबर्ट जिमरमैन के नाम से। एक आम सा लगने वाला यहूदी परिवार था।
हाँ, पिता अब्राहम का उपकरणों का स्टोर था, माँ बिट्रीज घर संभालती थी, मतलब एक भावनात्मक सहारा थी। लेकिन डिलन अपनी किताब में बताते हैं कि वो बचपन से ही खुद को वहाँ फिट नहीं पाते थे।
अच्छा,
एक बाहरीपन महसूस करते थे, जैसे वो उस जगह के थे ही नहीं। शायद यही एहसास उन्हें कुछ अलग करने की तरफ ले गया।
और उस अलग रास्ते की पहली झलक उन्हें शायद संगीत में मिली, रेडियो से।
बिल्कुल, देर रात रेडियो पर बजने वाले गाने, हैंक विलियम्स, मडी वाटर्स, उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थे, हिबिंग की बंधी बंधाई जिंदगी से एकदम अलग। किताब में वो लिखते हैं कि कैसे ये आवाजें उनके अंदर कुछ जगा गईं, और फिर उन्हें मिली वुडी गुथरी की आत्मकथा बाउंड फॉर ग्लोरी।
हाँ हाँ, उसका जिक्र है।
ये उनके लिए एक तरह का नक्शा बन गई। गुथरी ने दिखाया कि एक कलाकार कैसे अपने वक्त का आईना बन सकता है, कैसे वो आम लोगों की आवाज बन सकता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने का जरिया था।
इसी खोज ने शायद उन्हें हिबिंग से बाहर निकलने का हौसला दिया। वो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी गए, पर वहां भी ज्यादा टिके नहीं लगता है।
हाँ, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जालवा ने मिनियापोलिस के लोक संगीत के अड्डे खींच रहे थे, डिंकी टाउन जिसे कहते थे। वहीं वो कॉफी हाउस में गाते थे, सीखते थे।
अच्छा,
और इसी दौरान रॉबर्ट जिमरमैन ने अपना नाम बदल के बॉब डिलन रख लिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये अपनी पुरानी पहचान, अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ से आजाद होने का एक कदम था, एक तरह से
एक नई पहचान गढ़ने की शुरुआत।
बिल्कुल, और फिर वो न्यूयॉर्क चले गए।
हाँ, अपने हीरो वुडी गुथरी से मिलने, जो उस वक्त बीमार थे। ये तो एक तीर्थयात्रा जैसा ही रहा होगा।
यकीनन, 1961 में वो ग्रीनविच विलेज पहुंचे, जो उस वक्त लोक संगीत का मक्का बना हुआ था। हर कोने पर संगीत, नए विचार, एक पूरा आंदोलन चल रहा था।
क्या माहौल रहा होगा।
और डिलन वहां एकदम सही वक्त पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात जॉन हैमंड से हुई। कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए नए टैलेंट खोजते थे वो। उन्होंने डिलन की प्रतिभा को पहचाना।
और फिर आया 1963 का एल्बम द फ्री व्हीलिन बॉब डिलन। इसमें ब्लोइंग इन द विंड जैसे गाने थे। इसने तो जैसे धमाका ही कर दिया।
हाँ, रातों रात वो अपनी पीढ़ी की आवाज बन गए। एक ऐसा तमगा जो उन्हें मिला तो सही, लेकिन किताब पढ़कर लगता है कि वो इससे कभी पूरी तरह सहज नहीं हो पाए।
हाँ, बोझ जैसा लगता था शायद।
हाँ, बोझ जैसा, जैसे लोग उनसे किसी पैगंबर जैसी उम्मीदें लगा बैठे हों, और वो तो बस संगीत बना रहे थे अपनी तरह से।
किताब पूरी कहानी सिलसिलेवार नहीं बताती, जैसा आपने शुरू में कहा था।
हाँ,
वो कुछ खास दौर पर फोकस करती है, जैसे बाद के सालों में शोहरत और कला के बीच की खींचतान।
सही।
और फिर 1980s के दशक में उनका वापसी करना, जब उन्होंने ओ मर्सी जैसा शानदार एल्बम बनाया, उस दौर के बारे में वो काफी विस्तार से लिखते हैं, है ना?
सही कहा। किताब का एक बड़ा हिस्सा न्यू ऑरलियंस में ओ मर्सी के रिकॉर्डिंग के बारे में है। ये दिखाता है कि उनके लिए रचनात्मक प्रक्रिया कितनी मायने रखती थी, कैसे वो सही माहौल, सही लोगों के साथ फिर से अपनी आवाज पा सके। और उनकी विरासत सिर्फ एल्बम या गानों तक सीमित नहीं है, 1988 से उनका लगातार चलने वाला टूर जिसे नेवर एंडिंग टूर कहते हैं,
हाँ, वो तो अब तक चल रहा है।
हाँ, वो भी उनकी पहचान का हिस्सा है। ये दिखाता है कि वो लाइव परफॉर्मेंस को कितना अहम मानते हैं। गानों को हर रात मंच पर नया जीवन देना उनके लिए जरूरी है।
और फिर 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये तो कमाली था। मतलब इसने जैसे लोकप्रिय संगीत और ऊंची कला के बीच की दीवार को ही गिरा दिया।
बिल्कुल, उनके गानों के बोलों को कविता का दर्जा मिला। ये उनके काम की गहराई और असर को दिखाता है।
तो ये तो हुई उनके जीवन की कुछ झलकियां, लेकिन सवाल यह है कि उनके अंदर वो कौन सी चीज थी जो उन्हें चलाती रही? उनके सोचने का तरीका क्या था? क्या दर्शन था?
अच्छा सवाल है। देखिए, किताब पढ़कर लगता है कि अमेरिकी लोक संगीत की परंपरा उनके लिए बहुत गहरी चीज थी।
बहुत ज्यादा।
आम लोगों की भावनाएं थी।
सही।
हाँ, वो खुद को इस परंपरा का एक सिपाही या संरक्षक ज्यादा मानते थे।
हाँ।
संरक्षक, ना कि कोई नया आविष्कारक।
अच्छा।
वो कहते हैं कि उन्होंने गाने बनाए नहीं, बल्कि उन्हें खोजा जो पहले से हवा में मौजूद थे। रे गूच जैसे गुमनाम पुराने संगीतकारों से सीखने का जिक्र वो बड़े सम्मान से करते हैं। ये दिखाता है कि वो जड़ों से कितना जुड़े थे।
और साथ ही उनमें लगातार खुद को बदलने, नया करने की जबरदस्त इच्छा थी, जिसे अंग्रेजी में रीइन्वेंशन कहते हैं। वो एक जगह टिकते ही नहीं थे।
सही पकड़ा, ये उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। जैसे ही एक फॉर्मूला कामयाब होता, वो उसे छोड़कर कुछ नया करने निकल पड़ते।
बिल्कुल, लोक संगीत से इलेक्ट्रिक रॉक की तरफ जाना।
हाँ, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए उन्हें बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन वो जोखिम उठाने से डरे नहीं। वो मानते थे कि कलाकार को स्थिर नहीं होना चाहिए, उसे बदलते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए।
उनकी सोच में अमेरिकी संस्कृति को लेकर भी एक खास नजरिया दिखता है, बहुत खुला हुआ, सबको साथ लेकर चलने वाला। वो मजदूरों, किसानों, बाहर से आए लोगों की कहानियों को अपनी आवाज देते थे।
हाँ, उनकी कला में एक तरह का लोकतंत्र था। वो सिर्फ बड़े शहरों या पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं गा रहे थे। और एक और बात जो किताब से उभरती है, वो है प्रामाणिकता की खोज।
हाँ, ऑथेंटिसिटी।
बिल्कुल, वो ऐसा संगीत बनाना चाहते थे जो दिल से निकले, ना कि सिर्फ बाजार या शोहरत देखकर। किताब में वो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में पुराने अखबारों, गृहयुद्ध के दौर के दस्तावेजों को पढ़ने का जिक्र करते हैं।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाता है कि वो अपनी कला के लिए इतनी गहराई में जाते थे, कितना शोध करते थे। ये कोई हवा हवाई बात नहीं थी।
वो एक तरह से सांस्कृतिक पुल बनाने का काम भी कर रहे थे, गांव और शहर, अतीत और आज के बीच।
बिल्कुल, और शायद इसमें एक आध्यात्मिक पहलू भी था। संगीत उनके लिए सिर्फ करियर नहीं, बल्कि एक गहरी जरूरी चीज थी, शायद पूजा जैसा। जब मुश्किलें आईं, आलोचना हुई, तो उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कमजोरियों को माना भी, लेकिन उनमें गजब का लचीलापन था। आलोचनाओं को भी उन्होंने शायद अपनी आग बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। और शोहरत, किताब पढ़कर लगता है कि वो हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते रहे,
ताकि वो उनके असली काम पर हावी ना हो जाए।
हाँ, बिल्कुल।
उनकी कहानी में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। किताब इनमें से कुछ पर रोशनी डालती है। पहला तो शायद वुडी गुथरी की खोज ही था जिसके बारे में हमने बात की।
हाँ, 1960 का वो पल। जैसा हमने पहले कहा, गुथरी की किताब बाउंड फॉर ग्लोरी ने उन्हें दिशा दिखाई। इसने न सिर्फ उन्हें न्यूयॉर्क जाने की प्रेरणा दी, बल्कि अमेरिकी लोक परंपरा से उनका रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ दिया। ये उनकी कला की नींव बनी।
सही।
बाद में न्यूयॉर्क के अस्पताल में बीमार गुथरी से उनकी मुलाकातें महज मिलना नहीं थी, वो एक तरह से उस परंपरा की मशाल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने जैसा था। डिलन के लिए बहुत बहुत मायने रखता था।
दूसरा बड़ा मोड़ जो बहुत विवादों में भी रहा, वो था 1965 का न्यूपोर्ट फोक फेस्टिवल, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक गिटार उठाया। वहां तो हंगामा मच गया था।
बिल्कुल, वो लोक संगीत का सबसे बड़ा मंच था, और वहां इलेक्ट्रिक गिटार बजाना, बाप रे, उस वक्त के लोक संगीत के शुद्धतावादियों के लिए नियमों को तोड़ने जैसा था।
हाँ, उन्हें लगा होगा कि ये धोखा है।
उन्हें लगा डिलन ने अपनी जड़ें छोड़ दी, वो व्यावसायिक हो गए, क्योंकि तब लोक संगीत का मतलब था ध्वनिक गिटार, सामाजिक संदेश, एक तरह की सादगी। इलेक्ट्रिक गिटार शोर और बाजारोपण का प्रतीक माना जाता था। किताब में डिलन सीधे सीधे इस विवाद पर ज्यादा नहीं लिखते, लेकिन उनका यह कदम दिखाता है कि वो दर्शकों की उम्मीदों या किसी एक छवि में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। उनके लिए अपनी कलात्मक खोज ज्यादा जरूरी थी।
तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या इसने उन्हें बदला?
यकीनन, इस विवाद ने उनकी रचनात्मक आजादी को और पक्का कर दिया। उन्होंने साबित किया कि वो किसी खांचे में फिट नहीं होंगे। इसी से फोक रॉक का जन्म हुआ, एक नई दिशा खुली।
अच्छा।
और जो विरोध हुआ, उससे भी उन्होंने सीखा होगा कि अपनी राह पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और कलाकार और दर्शकों का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं।
और तीसरा अहम मोड़, 1966 की वो मोटरसाइकिल दुर्घटना, ये भी काफी चर्चित रही।
हाँ, ये भी एक थोड़ी रहस्यमयी घटना रही है। उस वक्त डिलन शोहरत के शिखर पर थे, लेकिन उसके दबाव से बुरी तरह थक चुके थे। लगातार टूर, मीडिया का पीछा, उम्मीदों का बोझ।
हाँ, बहुत ज्यादा हो गया होगा।
बिल्कुल। दुर्घटना कितनी गंभीर थी ये आज तक साफ नहीं है, लेकिन इसने उन्हें सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह पीछे हटने का मौका जरूर दे दिया। ये एक तरह का जरूरी ब्रेक था उनके लिए।
और उस एकांतवास के दौरान क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गए थे?
वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगे वुडस्टॉक में, और संगीत वो रुका नहीं, बल्कि वहां उन्होंने द बैंड के साथ मिलकर संगीत की जड़ों की तरफ वापसी की।
अच्छा, मतलब फिर से जड़ों की ओर।
हाँ, अमेरिकी लोक, कंट्री, ब्लूज, इन सबको खंगाला। इसी दौर में वो गाने बने जो बाद में बेसमेंट टेप्स के नाम से मशहूर हुए। ये संगीत बहुत निजी था, बिना किसी बाहरी दबाव के बनाया गया। इस दौर ने उन्हें पीढ़ी की आवाज वाले पैगंबर से बदलकर एक ऐसे कलाकार में बदल दिया जो अमेरिकी संगीत की आत्मा को चुपचाप खोज रहा था। ये उनके लिए एक तरह का खुद को फिर से पाने जैसा था।
वाह, क्या सफर है! इतने उतार चढ़ाव, इतनी परते, इस पूरी कहानी से, इस जटिल जीवन से हम आज क्या सीख सकते हैं? मतलब उनकी शोहरत भले ही आसमान छूती हो, लेकिन उनके संघर्ष, पहचान का संकट, रचनात्मक रुकावटें, दबाव, ये सब बहुत मानवीय लगते हैं।
बिल्कुल, यही इस किताब की खूबी है। वो डिलन को एक इंसान के तौर पर दिखाती है, किसी देवता की तरह नहीं। पहली बात तो यही है कि सार्वजनिक छवि और असली इंसान के बीच का तनाव कितना मुश्किल हो सकता है।
हाँ, ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है।
बिल्कुल, आज सोशल मीडिया के जमाने में ये बात और भी ज्यादा लागू होती है। डिलन ने हमेशा अपनी निजी दुनिया को बचाने की कोशिश की।
अब प्रामाणिकता की वो तलाश, वो कितनी मुश्किल हो सकती है, खासकर जब दुनिया आपसे कुछ और उम्मीद कर रही हो।
हाँ, अपनी आवाज पर टिके रहना, भले ही वो लोकप्रिय ना हो, और बार बार खुद को बदलने का साहस। देखिए, सफलता मिलने पर उसी रास्ते पर चलते रहना आसान होता है।
बिल्कुल।
लेकिन डिलन ने हमेशा नए रास्ते चुने, भले ही वो मुश्किल हो। ये दिखाता है कि सीखना और बढ़ना कभी बंद नहीं होना चाहिए। किताब पढ़कर लगता है कि वो हमेशा एक छात्र बने रहे, हमेशा सीखते रहे, चाहे वो कितने ही बड़े स्टार क्यों न बन गए हों।
ये दिलचस्प है जिस तरह उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, चाहे वो शोहरत का दबाव हो या कुछ नया न सोच रहा हो। उनके तरीके आज भी काम आ सकते हैं, जैसे माहौल बदलना।
हाँ, जैसे वो न्यू ऑरलियंस गए,
या जड़ों की तरफ लौटना, जैसे बेसमेंट टेप्स के समय हुआ, और आलोचना से सीखना।
हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी रचनात्मक ऊर्जा में बदलना। ये सब सबक हैं जो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले इंसान के लिए प्रासंगिक हैं। बहुत जरूरी सबक।
ठीक है, तो इस गहरी और दिलचस्प बातचीत को समेटने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस किताब और डिलन के जीवन से तीन मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? एक एक करके देखते हैं।
जरूर। पहली, एक भावनात्मक बात जो दिल को छूती है, वो है कलात्मक विरासत का भार और सम्मान। डिलन का अमेरिकी लोक परंपरा के प्रति गहरा सम्मान।
हाँ।
और उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी की भावना साफ झलकती है। ये सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक भागा था। जैसे उनका रे गूच जैसे गुमनाम संगीतकारों से सीखने का जिक्र करना, ये दिखाता है कि वो इस विरासत को कितना सहेज कर रखना चाहते थे। वो खुद को उस बड़ी कहानी का एक हिस्सा मानते थे। ये बहुत मार्मिक है।
बिल्कुल। दूसरी, एक बौद्धिक या सोचने वाली बात वो है, सच्ची रचनात्मकता का मतलब क्या है? डिलन की कहानी और ये किताब दिखाती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ प्रेरणा के इंतजार का नाम नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसके लिए लगातार मेहनत, अपने हुनर को मांझना, पढ़ना, लिखना, चीजों को गहराई से समझना, जैसे उनका लाइब्रेरी में पुराने अखबार पढ़ना, और बनी बनाई उम्मीदों को तोड़ने का जिगरा चाहिए। ये एक बहुत सक्रिय, जानबूझकर की जाने वाली कोशिश है।
सही कहा। और तीसरी, एक ऐसी बात जो हम सब पर लागू होती है, वो है अपनी निजी दुनिया और रचनात्मकता को बचाने के लिए सीमाएं तय करने की जरूरत।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
डिलन का पूरा जीवन दिखाता है कि बाहरी दुनिया की उम्मीदों, शोहरत के दबाव और अपने अंदर की सच्ची आवाज के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। आज की इस दुनिया में, जहां हम सब हर वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां निजी और सार्वजनिक के बीच की रेखा धुंधली हो रही है।
हाँ, बिल्कुल।
अपनी रचनात्मकता और मानसिक शांति को बचाने के लिए ये लक्ष्मण रेखा खींचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
बहुत सही कहा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।